जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Thank you.
पूर्णिमा को एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। कहा जाता है व्यास जी ने चार वेद, उपनिषद, 18 महापुराण, महाभारत, गीता, इस सब को संकलित किया था। वो दिन आषाढ़ पूर्णिमा का ही था। संकलित का अर्थ है कंपाइल करना। तो लोग व्यास जी को बहुत आदर देते थे, उनको गुरु मानते थे कि उन्होंने समाज के सामने, संसार के सामने, विश्व के सामने जो ग्रंथ रखे हैं वो ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं, आज भी उनको समझने का प्रयास किया जाता है। समय बीतता गया, कहते हैं उसके बाद कुछ लोग व्यास जी के इन ग्रंथों को या ग्रंथों की जो टीचिंग बोलते हैं, जो वहां से आपने गुण निकाले हैं, रस निकाले हैं, उनको बांटते थे। बांटने का अर्थ होता है जा जाकर जगह जगह पे प्रवचन देते थे, लोगों को समझाते थे, उनके गुण अर्थ समझाते थे। कहा जाता है जो साधु संत होते थे ना, वो कभी एक जगह टिकते नहीं थे। जैसा कहा जाता है रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। आप एक बर्तन में पानी को उबल कर रख ले, दो तीन दिन में पानी खराब हो जाएगा और बहता हुआ पानी साफ रहता है। इसलिए कहते हैं साधु संत जो होते हैं कभी भी एक जगह रुकते नहीं है, वे बहते रहते हैं, वे चलते रहते हैं गाँव से गाँव, शहर से शहर, समाज के कल्याण हेतु। और आषाढ़ के समय बरसात का मौसम होता है, उस जमाने में यहां से वहां जाना मुश्किल होता था, तो वह एक जगह कुछ महीने के रुक जाते थे। तो आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि वेद व्यास जी ने उस समय सारे ग्रंथ संकलित किए थे, उस दिन वह खासकर प्रवचन देते थे, लोगों को समझाते थे, लोग उनको गुरु बोलने लग गए, वो दिन गुरु पूर्णिमा बन गया। असल में था तो व्यास पूर्णिमा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ गुरु पूर्णिमा बन गया। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं हम क्या करते हैं? हम मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, और जिनको हम अपना गुरु मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पादुका पूजा भी करते हैं, गुरु के चरणों की पादुका। आप जरा विचार कीजिएगा, ये सब क्रियाकांड है, रिचुअल है। अगर इससे करने से आपके अंदर कोई बदलाव आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन गूढ़ अर्थ को समझिएगा। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है। गुरु तो मतलब है द स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की नदी जो बहते बहते आपको गुण दे जाए, जो बहते बहते आपको रास्ता दिखला जाए, जो आपको ऊंचा उठाने हेतु, परमात्मा तक ले जाने हेतु कुछ ऐसा काम कर जाए कि आप अंतर्मुख हो जाएं। गु का अर्थ है अंधेरा, डार्कनेस, और रूह का अर्थ है अंधेरे को हटाने वाला गुरु, जो आपके जीवन में से माया के अंधकार को हटाकर आत्मा का प्रकाश लेकर आ जाए, वो गुरु है। कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके पति भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई और जीव जंतु भी हो सकता है। कहते हैं गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। वो तो यहां तक कहते थे भाई देखो ये जो धरती है मेरी गुरु है, मैंने धरती से सीखा है, धरती सब कुछ सहकर भी सहनशील रहती है, हमारे को तभी भोजन देती है एक माँ की तरह। मैंने आकाश से सीखा है, मैंने जल से सीखा है, जल हमेशा शीतल रहता है, मधुर रहता है, मधुर भाषी भवा, हमेशा मीठा बोलो, मैंने जल से सीखा है। जल का स्वभाव शीतल है, शीतलता है, कूलनेस है, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने 24 गुरु बना लिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा क्यों होती है, उसका एक अटूट कारण है। पूर्णिमा क्या है, व्हाट इज फुल मून? जिस दिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अधिकतम प्रतिबिंबित करता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। अंग्रेजी में द डे मून रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम लाइट ऑफ सन ऑन टू अर्थ, दैट इज कॉल्ड फुल मून। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मन का प्रतीक है, ठीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य बुद्धि का भी प्रतीक है। अब आप विचार करेंगे, हमारा मन आत्मा के प्रकाश को अगर प्रतिबिंबित करे, रिफ्लेक्ट करे, कैसे? कर्मों के द्वारा। हमारा मन सूर्य के प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को लेकर हमारे कर्मों में डाल दे, हमारे कर्म सूर्य जैसे हो जाएं, पवित्र हो जाएं, तो वो गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, वो पूर्णिमा हो जाएगी। मन में क्या है हमारे? हमारे मन में वासनाएं हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, सभी के मन में है, कुछ ज्यादा कुछ कम। आप विचार करें, आप कहीं पर गए, आपने सुंदर स्त्री को देखा, आपके मन में भाव आ गया, काश मेरी पत्नी होती। आपने सुंदर पुरुष को देखा, आपके मन में भाव आ गया, काश ये मेरा पति होता। आपने किसी के बच्चे को देखा जो बहुत प्रभावशाली, आपके मन में आ गया, काश मेरी संतान ऐसी होती। आपने बाजार में एक कोई वस्तु देखी, बहुत अच्छी लगी, आप कहते काश मेरे पास होती। आपने सड़क पर दौड़ती हुई एक वाहन देखा, एक गाड़ी देखी, एक कार देखी, मन में आ गया, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। जैसे ही आप अपने मन में कोई इच्छा को लेके आते हैं, वो आपकी इच्छा आपके मन में बह जाती है। अगर हम कोई बात की, कोई चीज की इच्छा बारंबार करेंगे, गौर कीजिएगा, बारंबार, रिपीटेडली, वो इच्छा और प्रबल हो जाएगी, वो इच्छा और स्ट्रांग हो जाएगी, वो इच्छा और इंटेंस हो जाएगी। अगर मैं कोई चीज के बारे में बार बार सोचता हूं, मनन करता रहा हूं, कॉन्टम्पलेट करता रहा हूं, वो मेरे दिमाग के तह में, बॉटम में जाके बैठ जाती है। जैसे आप एक लकीर खींचते हैं कागज के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा एक लकीर खींचते हैं, फिर उसके ऊपर एक और बार लकीर खींचते हैं, उसी लकीर के ऊपर आप बार बार लकीर खींचते जाएंगे, वो लकीर गहरी हो जाएगी। ठीक है ना, تو جن چیزوں کو ہم پانا چاہتے ہیں, جو چیز ہم چاہتے ہیں, انسان ہو یا وستو ہو یا جانور ہو, کچھ بھی ہو, آپ اس کے بارے میں بار بار سوچتے رہیں گے. مان لیجئے کسی ویکتی کے اندر درگن ہے, کوئی آدمی درگنوں سے بھرا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں بار بار چرچا کرتے رہیں گے, بار بار بولتے رہیں گے, مزے لیتے رہیں گے, وہ درگن بھی آپ کے تہ میں جا کے بس جائیں گے. کین یو امیجن اٹ؟ جس بات کا آپ منن کریں گے, واٹ ایور یو کانٹمپلیٹ آن, دوز کوالٹیز ول کم ان ٹو یو. سمپل بات, سرل بات ہے یہ. اور جب آپ پورے جیون میں, آپ کا جیون مان لو 80 ایئرس کا, 80 ورش کی آیو ہے آپ کی, آپ اپنے جیون کال میں ان باتوں کو بار بار منن کر کے سوتے رہیں گے, اندر لاتے رہیں گے, وہ آپ کے اندر ایک ملبہ بن جائے گا. آپ ذرا وچار کیجیے گا, ذرا سوچیے گا ایک پل کے لیے, کیا آپ کے گھر کے باہر آپ کی جو میونسپالٹی ہے, جو کاؤنسل ہے, انہوں نے ربش بن رکھے ہوئے ہیں, آپ اس بن کے اندر ہفتہ بھر سامان گند بھرتے ہیں, ایک دن ہفتہ میں ایک گاڑی آپ کے گھر کے باہر آتی ہے, ایک ٹرک گھر کے باہر آتا ہے, اس بن کو اٹھا کے لے جاتا ہے, صاف کر جاتا ہے, یعنی کہ بن کو خالی کر دیتا ہے, ربش چارے لے جاتا ہے, ملبہ لے جاتا ہے. صحیح بات ہے یہ نہیں؟ تو آپ پرتیک ہفتہ اپنے گھر میں سے ملبے کو نکال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. زیادہ ملبہ ہوگا تو مچھر آئیں گے, ملبہ ہوگا تو کیٹ پتنگے آئیں گے, بیماریاں آئیں گی. اسی پرکار سے اگر آپ کے من کے اندر ملبہ جمع ہو رہا ہے تو اسے کون صاف کرے گا؟ اگر آپ کے گھر کے باہر ایک ربش بن پڑا ہوا ہے, اس میں ملبہ پڑا ہوا ہے, آپ چار پانچ دن کے لیے باہر چلے گئے, گھومنے چلے گئے ہفتے بھر کے لیے, کوئی آپ کا پڑوسی اس کو صاف کر دے گا, باہر رکھ دے گا لا کر سڑک پہ, گاڑی آئے گی اس کو صاف کر جائے گی. لیکن جو آپ کے من میں ملبہ ہے اسے کون صاف کرے گا؟ اسے کوئی اور صاف کر ہی نہیں سکتا, کوئی آپ کے من میں جھانک کے تھوڑی دے سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ ڈال کے آپ کے اندر وہ ملبے کو نکال لے گا, کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن نہیں کر سکتا. وہ اس ملبے کو آپ نے جمع کیا اور آپ کو نکالنا ہے. جب آپ کے من میں جو ملبہ ہے نکل جائے گا, من پوتر ہو جائے گا, من صاف ہو جائے گا, تبھی تو سورج کے پرکاش کو, تبھی تو آتما کے پرکاش کو آپ اپنے بھیتر لا کے اس سے ایکشن لے پائیں گے, اس سے کرم کر پائیں گے, آپ شریر کا پریوگ کر پائیں گے اچھے کاموں کے لیے. یہ ملبہ ہمارے بھیتر کہاں سے آتا ہے؟ یہ ملبہ آتا ہے جب ہم بار بار ٹی وی میں گندے پروگرام دیکھتے ہیں جس سے ہمیں کوئی ویلیو نہیں مل رہی ہے, ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہزاروں چیزیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, صبح اٹھتے ہی جب ہم کہتے ہیں پرماتما کا نام لینا چاہیے, ہوتا کہ آج کل صبح اٹھتے ہی ہمارا ہاتھ سیدھا جاتا ہے موبائل فون کی اور اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, کوئی میسج تو نہیں آیا, کوئی واٹس ایپ میسج تو نہیں ہے, کوئی ٹیلی گرام میں میسج تو نہیں ہے, کوئی میسنجر میں میسج تو نہیں ہے, فیس بک میں تو نہیں ہے. صبح سے شام تک ہمارے انگلیاں موبائل فون پہ تھرکتی رہتی ہیں, ہم نے سمے کم نکالا اپنے لیے. گرو کا کام ہے آپ کو آپ کے انتر کی اور لے جائے, وہ گرو ہے, گرو کوئی ویکتی نہیں ہے, گرو از اے پرسپشن کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے انتر میں چلے جائیں, اپنے اندر بیٹھ کے اپنی صفائی کرنے لگ جائیں, تبھی تو آپ کے اندر آتما کی شکتی آئے گی. انیتھا گرو پورنا مناتے رہیے آپ پوری زندگی بھر, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہوگا. گرو پورنیما آپ ذرا وچار کیجیے گا, آپ اپنے بینک بیلنس دیکھتے ہیں, آپ ایک پلان بناتے ہیں, فائنینشیل پلاننگ میرے اگلے سال کے لیے کیا ہوگی, ویری گڈ, آپ سب کچھ پلاننگ کرتے ہیں, اپنے پوری لائف پلان کر رکھی ہے, کب میں ریٹائر ہوں گا, میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے, میں کون سے دیش میں گھومنے جاؤں گا, میں کیا کروں گا, لیکن کبھی ہم نے یہ پلاننگ کری ہے کہ میں کچھ سمے بیٹھ کے اپنے انتر میں جھانک کر کچھ چیزیں باہر نکالوں؟ اس کے لیے آپ کا پرشارتھ چاہیے, سیلف ایفرٹ چاہیے, इसे कहा गया साइलेंट सिटिंग, चुपचाप बैठ जाना। कब बैठ जाना? अरे भैया दो तीन मिनट रोज निकालें, अंदर झांक के देखें, अपने अंदर बात करें। धीरे धीरे आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। जैसे जैसे मलबा कम होता जाएगा, मन के अंदर आवाज क्लियर होती जाएगी। सिंपल बात है। अगर आपके दिमाग में बड़ी वासनाएं बसी हुई हैं तो भगवान की आवाज आएगी कहां से? वासनाएं विल ओवरटेक इट, ओवरपावर इट। तो इसलिए कहा गया कि आप गुरु की जब पूजा करते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको कावलागु पाए, बलिहारी है गुरुदेव की जिन्हें गोविंद जी बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों आपके सामने खड़े हैं, गुरु और परमात्मा खड़े हैं, सबसे पहले गुरु के चरण में लगोगे कि गुरु ने आपको परमात्मा से मिला दिया। वो गुरु है, गुरु वो है। गुरु ऐसा नहीं है जो आपका बोलेगा भैया मेरे पैर धो लो आके, भैया मुझे प्रणाम करो। गुरु का आपसे कोई मतलब नहीं है। गुरुओं की कमी भी नहीं है, शिष्यों की कमी है। जब आप तैयार हो जाओगे, व्हेन यू आर रेडी, गुरु विल वॉक इनटू योर लाइफ। सीधी बात है। अब आप सोचिए, जरा विचार कीजिएगा, क्या हम गुरु चाहते हैं? क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? हमने बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, सुना आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन प्रकार के गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एट्रीब्यूट्स हैं, गुणाज। ब्रह्मा राजसिक है, विष्णु सात्विक है, महेश्वर तामसिक है। तामसिक मतलब नहीं गंदा है, तामसिक मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव, जो कि परिवर्तन लेके आता है। तो हम जो परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, जो गुरु की पूजा के द्वारा हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो आपके भीतर है। तो हमें करना क्या है? हमारे को अपनी दृष्टि बाहर से हटा के अंदर की ओर लेके जानी है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, हिमालय की चोटी में जाने की, समंदर के तह में जाने की, जंगलों में भटकने की। आप अपने घर में जहां पर भी आप हैं, वहीं बैठ के आप अपने भीतर परमात्मा को अपने गुरु मानकर उनके दर्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू ट्राई। आप प्रयास करेंगे ना तो आपको रास्ता मिलेगा। सबसे बड़ी बात है प्रयास करना, सबसे बड़ी बात है आगे बढ़ने की इच्छा लेके आना। अच्छा, जैसा मैं पहले कह रहा था भाई, आपके पास बैंक बैलेंस देखते हैं, सबको रिव्यू करते हैं, ठीक है ना? तो आपने कभी रिव्यू किया कि जो मैं पिछले साल मैं था आज वही हूं? नहीं। हैव यू एवर रिव्यूड योर एटीट्यूड, योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? आध्यात्मिक जीवन में क्या कितना आगे बढ़ गए हैं आपने कभी रिव्यू किया? गुरु पूर्णिमा इज द डे टू डू सो। गुरु पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन आप बैठ के आप रिव्यू करें, रीअसेस कीजिए, भाई पिछले साल मैं इतना क्रोधी व्यक्ति था, इस साल मैं बेटर हो गया हूं, इंप्रूव हो गया हूं। अभी भी मेरे अंदर कुछ वासनाएं हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मुझे उनसे बाहर निकलना है। जब तक आप स्वयं अपने अंदर बदलाव लाना नहीं चाहेंगे, कोई भी गुरु आपका कुछ नहीं चेंज कर सकता। यू हैव टू हैव ए बर्निंग डिजायर टू अटेन एनलाइटनमेंट। When you will have the burning desire to attain enlightenment, definitely you will get guidance. Guru आपको guide करेगा। लेकिन जब आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है तो वो भगवान कहाँ से help करेंगे आपको? तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है purifying the heart and purifying the mind. तो इसको skillfully करना पड़ता है। कैसे? रात को सोने से पहले बोलो, भैया भगवान जो मैंने दिन भर में किया है, जो मैंने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, मैं सब आपको अर्पित करता हूं। कर्म और कर्म का फल सब आपको अर्पित करता हूं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। ऐसा करने से आपके अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है। विचार की अवेयरनेस डेवलप होती है। एक चीज और, सारे वेदों का एसेंस, सारे वेदों का रस, चार वेद, 18 महापुराण, 108 उपनिषद, शायद ज्यादा भी हों, सारों का रस सबको कंडेंस करके सबके जूस को निकाला जाए, वो पता क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपको समझ आए या ना आए उसकी व्याख्या मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, समय कम है, लेकिन गायत्री मंत्र आपको समझ में आए या ना आए उसको बोलने से, उसका उच्चारण करने से, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो साउंड है, वो आप में बदलाव लाता है. ओम भूर्भुवस्वः तस्वितो वरेण्यं भर्गोचरस्य धीमहि धियो यः प्रचोदयात्. भूर्भुवस्वः जो है वो तीन लोक कहते हैं. भूर मतलब पृथ्वी, पृथ्वी लोक यानी कि जिससे हम बने हैं, हमारा शरीर बना है. भुवा मतलब लाइफ फोर्स, भुवा मतलब एफ्टरप्रिंग कह सकते हैं, भुवा मतलब प्राण शक्ति, और स्वाहा मतलब विजडम ज्ञान जो सूर्य की शक्ति है. सावित्री सत्यवान को बचा के लाई थी ना, प्राण शक्ति को. सविता सूर्य को बोला गया, सरस्वती ज्ञान को बोला गया है. ये सब सूर्य से मिलते हैं आपको. तो कहते हैं दिस इज रेडिएशन, दिस इज मेटेरियलाइजेशन, वाइब्रेशन रेडिएशन. भूर मेटेरियलाइजेशन है, आपका शरीर जिससे बना है. वाइब्रेशन है प्राण शक्ति, भुवा स्वाहा है रेडिएशन जो सूर्य से आ रहा है. तो इन मंत्र को पढ़ने से ही आपके अंदर अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू डू इट. समय निकालिए, कुछ मिनट इसको उच्चारण कीजिए, आप देखिए आपकी गुरु पूर्णिमा सफर होने लग जाएगी. गुरु पूर्णिमा आपके मन के अंदर एक सात्विकता आ जाएगी, आपका मन आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करके संपूर्ण रूप से इन फुलनेस आपके कर्मों में ढाल देगा और संसार के सामने लेके आ जाएगा और आपकी गुरु पूर्णिमा हो जाएगी. जय श्री साईं राम.